नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। हम चर्चा करते आ रहे हैं व्यक्तित्व विकास का, कि किस प्रकार किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसे सदा सदा के लिए अमर बना देता है। हम महापुरुषों को देखते हैं, ये उनका व्यक्तित्व ही है जो आज भी हमारे जेहन में, हमारे हृदय पटल पर अंकित है। अपने गुणों के माध्यम से, अपने आध्यात्मिक व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने सदाचार के माध्यम से वो भले चले गए, लेकिन उनका सदाचार, उनका व्यक्तित्व आज भी लोगों के दिल में जीवित है। हम भी क्यों ना ऐसा ही व्यक्तित्व बनाएं जो हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करते रहें, और जब तक हम इस संसार में रहें तब भी लोग आदर्श के रूप में हमारी ओर देखें। इसीलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं आदरणीय भ्राता जी के साथ। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
शुक्रिया।
प्राता जी, व्यक्तित्व विकास की जब से हमने चर्चा करनी शुरू की है तब से बहुत सारे ईमेल्स, लोगों के पत्र हमारे पास आ रहे हैं। पिछली बार भी हमने कुछ ईमेल्स आपके सामने रखे थे, लोगों के जो प्रश्न थे। आज भी हमारे पास कुछ ईमेल हैं प्राता जी, उन्हें मैं लूंगा एक एक करके, जिनका जवाब हम आपसे चाहेंगे।
बिल्कुल।
पहला प्राता जी जो हमारे पास मेल आया है, ये आया है सीतापुर छत्तीसगढ़ से। नरेन किरकेट्टा जी लिख रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं शारीरिक रूप से विकलांग हूं, कुछ लोग मेरे प्रति सहानुभूति जताते हैं तो कुछ लोग हंसते हैं। शारीरिक व्यक्तित्व के हिसाब से तो मैं शायद कभी भी आकर्षक न बन पाऊं, लेकिन मैं अपने व्यक्तित्व में ऐसा क्या शामिल करूं जो मेरे अंदर की हीन भावना भी समाप्त हो और लोग मुझ पर हंसने या सहानुभूति जताने के बजाय गर्व करें, आदर्श रूप में देखें।
बहुत अच्छा प्रश्न है इनका, क्योंकि निश्चित रूप से शारीरिक रूप से तो अब ये बहुत चमकदार पर्सनालिटी वाले नहीं बन पाएंगे
जी।
इसको तो स्वीकार करके पहले तो अपने मन को शांत रखें
जी।
दूसरा, ह्यूमन मेंटलिटी भी समझ लें। कुछ लोगों की थोड़ी मेंटलिटी होती है ऐसे केसेज में सहानुभूति दिखाना, वो इसको मानवता समझते हैं, और कुछ लोग ऐसे ढंग के होते हैं जो जरा मजाक भी करेंगे, थोड़ा हंसेंगे। ऐसे लोगों के साथ मुस्कुरा देना उनका एक सही उत्तर है
जी।
अगर उनके कमेंट्स या उनकी जोकिंग देखकर ये परेशान होंगे तो इनकी व्यक्तित्व में कोई रौनक नहीं आएगी, इसलिए उसको मुस्कुरा कर पूरा कर लेना, ये जानते हुए कि ह्यूमन नेचर ही ऐसी है। रही बात तब ये अपनी पर्सनालिटी को आकर्षक बनाना चाहते हैं तो इन्हें अपने अंदर कोई ना कोई ऐसी योग्यता डेवलप करनी होगी जो इनमें है, उसको इतना डेवलप कर लें कि उस पर संसार को गर्व हो। जैसे कर लेते हैं ना, बिना हाथ भी कट गए, पैर भी नीचे से कट गए। एक व्यक्ति ने पेंटिंग की ना, पेंटर बनाओ बहुत फेमस
जी।
एक फोटोग्राफर बना बहुत फेमस।
ऑस्ट्रेलिया में एक मोटिवेटर गुरु है प्राता जी, उनका भी हाथ नहीं है, पैर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मोटिवेशनल स्पीकर
तो है। ऐसी ही इनको कोई योग्यता जो इनके पास पहले से ही हो उसको बहुत विकसित कर लेना चाहिए। दूसरे, इनको विशेष ध्यान देना चाहिए अपने सद्गुणों पर। ये बहुत प्रसन्न रहें, इतने प्रसन्न रहें कि अच्छे खासे लोगों को देखकर लज्जा आने लगे कि ये विकलांग व्यक्ति इतना खुश, और हम सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी टेंशन में रहते हैं, खुशी की तलाश करते हैं, बाजार में भी खुशी ढूंढने जानते हैं, कहीं कीमत देकर भी नहीं मिलती है। तो कुछ गुणों पर ये ध्यान दें, अपने को आत्मनिर्भर बनाए रखना, किसी पे भी डिपेंडेंट न होकर रहना, अपने विचारों को बहुत महान बना देना। ऐसे कई विकलांग हमने देखे जिनसे लोग अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते हैं, तो अपने विचारों को इतना महान बना दें कि लोग इनसे राय पूछने आए, और बहुत अच्छा हो कि ये राजयोगी बन जाएं, तो इनके चेहरे पर, मस्तक में जो आत्मा मणि है वो इतनी चमकने लगे कि उसकी चमक को देखकर दूसरों के दुख भी दूर हो जाएं, तो ये इनके व्यक्तित्व का बहुत सुंदर विकास होगा
जी। व्रता जी, मुझे भी एक बात जब आपने कही तो याद आई, मैं बॉम्बे गया हुआ था कुछ वर्ष पूर्व, मैंने वहां देखा कि एक अपाहिज व्यक्ति भीख मांग रहा है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर बहुत चमक थी, वो बहुत प्रसन्न था। तो मेरी ट्रेन थोड़ी लेट थी, मैं उनके पास गया और मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया कि आप अपाहिज हैं, मतलब आपके हाथ नहीं, एक पैर नहीं था उनका, एक हाथ भी नहीं था। मैंने कहा कि आपका एक हाथ नहीं है, एक पैर भी नहीं है, फिर भी आप और भिक्षा भी आप मांग रहे हैं, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? आप कभी भगवान से शिकायत नहीं करते कि भगवान तुमने मुझे हाथ भी नहीं दिया, पैर भी नहीं दी और साथ ही मुझे भिक्षा का पात्र थमा दिया? तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया, भ्राता जी जो आप अभी कह रहे थे, तो अचानक मुझे याद आया, उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं देखता कि भगवान ने मुझे क्या नहीं दिया है, मैं ये देखता हूं कि भगवान ने मुझे क्या दिया है और मैं उसी में संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं। तो बहुत सुंदर सीख मुझे उस भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति से मिली।
ये तो सबके लिए जी, न केवल विकलांग और बेगर्स के लिए, लेकिन संसार के हर व्यक्ति के लिए ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है सदा प्रसन्न रहने का, सदा संतोष में रहने का, कि भगवान से हमें क्या नहीं मिला उसकी शिकायत करने के बजाय उससे हमें क्या क्या मिला, और उसमें भी विशेष रूप से इस समय तो आकर वो हमें क्या क्या दे रहा है। अगर उन अचीवमेंट्स को हम याद करें तो हमारा चित्त हमेशा प्रसन्नता का सागर बनकर रहे।
जी, मतलब भ्राता जी, अपनी प्राप्तियों को यदि हम देखें, अपनी उपलब्धियों को, कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया है, तो एक अलग प्रकार का संतोष और खुशी हमारे जीवन में रहती है। और वहीं कहीं हम दूसरों को देखने लगते हैं, दूसरों की प्राप्तियों को देखने लगते हैं, तो हम खिन्न रहते हैं, अप्रसन्न रहते हैं और जीवन से हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं।
बिल्कुल ठीक
जी। भ्राता जी, हम अगला प्रश्न ले रहे हैं। ये प्रश्न हमारे पास आया है जयपुर राजस्थान से। ये लिख रही है, आई एम शालू doing graduation from a reputed institute. I am doing very good in academics and always top in my class, but the problem is that I am not very confident in speaking English. Secondly, whenever I have to converse with anyone, I am not able to communicate my feelings and views properly. This also happens in interviews and I am not able to clear the interview. Please help me.
So, Ms. Shalu, dekhiye, is sab ka ek hi karan hai, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अंदर में बसा हुआ है। तो इंग्लिश जानते हुए भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाती हैं, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और आपस में फ्रेंड्स के बीच थोड़ा इंग्लिश में ही बातें करने की प्रैक्टिस किया करें, घर में भी छोटी चीजों में इंग्लिश का प्रयोग करने लगें, और फिर थोड़ा थोड़ा सा एक छोटी सभा में भी, चार पांच अपने स्टूडेंट्स अपने साथियों के सामने भी एक पांच मिनट का सात मिनट का लेक्चर देने की प्रैक्टिस करें, तो ये जो एक स्टेज फियर है ये समाप्त हो जाएगा। रही बात, ये बहुतों में एक वीकनेस होती है कि अपनी अच्छी बात भी दूसरों को कह न पाना, सब कुछ तैयारी होते भी इंटरव्यू में ऐसा नर्वस हो जाना, ऐसा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाना कि सही उत्तर न दे पाना, कुछ भय की फीलिंग में रहना। इसके लिए हमारे पास राजयोग में एक बहुत अच्छी विधि है और वो है स्वमान। जैसे हम भगवान के बच्चे हैं तो हम बहुत महान हैं, सवेरे उठते ही आप इस फीलिंग को बढ़ाओ। हम भगवान के बच्चे हैं तो हम बहुत शक्तिशाली हैं, भगवान की बहुत सारी क्वालिटीज भी हमारे अंदर हैं, इसको हम स्वमान कहते हैं। यानी मनुष्य के अंदर जो इन्फीरियर फीलिंग्स हो गई हैं कि हम कुछ नहीं हैं, हम तो ये काम कर नहीं पाएंगे, हमसे तो दूसरे लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम इस सेल्फ रेस्पेक्ट का अभ्यास करें, उसमें भी शुरू यहीं से करें, हम भगवान के बच्चे हैं, वो ज्ञान का सागर है तो हमारे पास भी बहुत ज्ञान है, हम उसके बच्चे हैं, वो बुद्धि का दाता है तो हमारे पास भी एक सुंदर बुद्धि है, उसने दी हुई है। ऐसी संकल्पों की प्रैक्टिस करते रहने से ये चीजें जागृत होंगी, जैसे वो डल हो जाती हैं, वो सुसुप्त अवस्था में आ जाती हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तो हम तो ये कहेंगे सेल्फ रेस्पेक्ट इज द की टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो इंग्लिश भी अच्छी बोलेंगी, इंटरव्यू में भी सफल होंगी और साथियों के बीच में भी जो आप कुछ कहना चाहती हैं उसे बेधड़क होके कह सकेंगे।
तो एक तो प्रैक्टिस करें भ्राता जी, कहीं से कोचिंग भी ले सकती हैं यदि उनको लगता है कि कोचिंग की आवश्यकता है तो। और उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात आपने कही, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। कई बार हम अनावश्यक रूप से ही भयभीत रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मेरा उच्चारण ठीक होगा या नहीं होगा, सामने वाला क्या पूछ लेगा। ये भय कहीं ना कहीं उसे पहले ही हरा देता है और सामने फिर इंटरव्यू इंटरव्यू में जाते हैं तो उनकी वैसी ही स्थिति हो जाती है जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए।
हाँ, कई बार तो लेक्चर करने के बाद लेक्चर करने वालों को वाले को अपने में ही एक फीलिंग होने लगती है कि ये शायद अच्छा नहीं हुआ, शायद लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो इससे वो और परेशान होने लगते हैं। लेकिन हमें हमेशा सोचना चाहिए, हमारे पास बातें बहुत अच्छी थी, पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, हमने बोला बहुत अच्छे ढंग से, एवरीथिंग वाज फाइन। ऐसा ये चीजें अपने में कॉन्फिडेंस लाएंगे। कहीं कहीं हो सकता है दूसरों को हमारी बात अच्छी लगी हो लेकिन वो उसको एक्सप्रेस न कर पाए, लेकिन उन्हें अच्छी तो लगी, दो लोग भी आके कह देते आपने बहुत अच्छा भाषण किया, अप्रिशिएट कर देते तो शायद हम फूले न समाते। लेकिन जैसे किसी ने कहा ही नहीं तो हम सोचते हैं कि शायद
गलत हो गया,
हम सफल नहीं हुए। लेकिन इस इन भावना को समाप्त करके हमेशा ये सोचो हमने अच्छा किया, कल और अच्छा करेंगे, फिर और अच्छा करेंगे।
बात भ्राता जी इंटरव्यू की, जब कभी युवाओं की बात आती है तो चूंकि प्रश्न तो ये नहीं है लेकिन मैं एक एडिशनल कर रहा हूँ, एक एडिशन है प्रश्नों में, कि जब इंटरव्यू की बारी आती है तो आमतौर पे मेंस तो निकाल लेते हैं बच्चे लेकिन इंटरव्यू में बहुत ज्यादा असफल होते हैं और इंटरव्यू से बहुत ज्यादा घबराते हैं। तो जो युवा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या अभ्यास करें, कैसी तैयारी करें ताकि इंटरव्यू में सफल हों?
हाँ, मेरे पास कई कैंडिडेट्स के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। उनमें मैं कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज लोगों को सिखा देता हूँ। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड की भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जिसका विस्तार तो हम यहाँ नहीं करेंगे, पर ब्रीफली ये है कि सवेरे उठते ही जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल जगा हुआ है, एक्टिव है, हम संकल्प करेंगे हम भगवान के बच्चे हैं, वो ऑल माइटी है तो मैं भी मास्टर ऑल माइटी हूँ। फिर हम एक संकल्प करेंगे कि आज इंटरव्यू में, आज या तीन दिन के बाद इंटरव्यू में मुझसे वही प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके आंसर मुझे आते हैं। और एक दूसरी चीज, अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक विजन दे दें
जी,
मेरा सिलेक्शन हो चुका है, जैसे मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है, मेरा सिलेक्शन निश्चित है, ये थॉट भी दे दे बहुत पावरफुल्ली, इससे वो भय निकल जाएगा। और फिर जितने भी दिन इंटरव्यू के हों, 7 दिन हों, 5 दिन हों, तो सवेरे उठते ही ये दो प्रैक्टिस करें, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, 5-5 बार करें, बिल्कुल मतलब खुले मन से करें, बहुत कॉन्फिडेंटली करें, तो इससे धीरे धीरे वो भय, वो नर्वसनेस खत्म हो जाएगी और बिल्कुल राजा की तरह, शेर की तरह बिल्कुल निडर हो के कि सिलेक्शन तो हमारा होना ही है, बिल्कुल ऐसे मजे से इंटरव्यू में हम जाएंगे तो जो बैठे इंटरव्यू लेने वाले उसको भी इस पर्सनालिटी का बहुत गहरा इफेक्ट होगा।
राता जी कितने दिन पहले से ये अभ्यास करने?
7 दिन पहले से करें तो बहुत अच्छा, पर अगर 7 दिन न बचे हों, जितने दिन बचे हों उतने ही दिन में कर लें।
बिल्कुल राता जी, इसका कोई अनुभव आपके पास है कि किसी ने ऐसा किया हो और उन्हें सफलता प्राप्त हुई?
मेरे पास अभी अभी का पीछे रायगढ़ की संगीता, एक लड़की जिसको इंटरव्यू देना था, उसे मेरे से पूछा, पहले तो पैसे की बात थी बहुत सारी देने की, तो मैंने कहा कि तुम संकल्प करो कि बिना पैसे के ही मेरा सब काम हो जाएगा, तो बात आते आते थोड़े से पर आ गई चाय पानी पर, वो भी अच्छा हो गया। और फिर मैंने उसको तैयार किया कि तुम ये सब अभ्यास करो जो मैंने अभी बताए, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरे से वही प्रश्न पूछेंगे जिनके आंसर मुझे आते हैं, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस ले आओ कि मेरा सिलेक्शन तो निश्चित है, हो ही गया है जैसे कि। तो वो वहां गई और वो उसे देख के, वो और सब बातें जो डिपार्टमेंटल थी वो तो पूछना भूल गए, और उन्होंने उसका बैच देख के यही पूछा कि बेटा तुम राजयोग करती हो क्या, मेडिटेशन करती हो? उसने कहा यस सर। तो कहा क्या होता है वो हमें भी जरा बताओ, तो उसने उनको थोड़ा थोड़ा बताया, 2-4 मोरल वैल्यूज के प्रश्न बहुत हल्के से उससे पूछे, और अगले दिन उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। बड़ी खुश हुई बिना कुछ झंझट के, बिना कुछ खास तैयारी के, लेकिन उसके मन से भी डर निकल गया था, उसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी, जो क्वेश्चन मुझे आते हैं वही पूछे जाएंगे।
लेकिन भ्राता जी, कहीं ऐसा तो ना हो कुछ विद्यार्थियों के साथ, युवाओं के साथ, कि वो पूरी तैयारी भी ना करें और कुछ ही तैयारी करें और ये सोचें कि यही क्वेश्चन आए, तो कहीं ये भी एक ड्रॉबैक तो
नेगेटिव बात हो सकती है। इसलिए क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड का यूज है तो उन्हें तैयारी तो बहुत अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आत्मविश्वास इंपॉर्टेंट पहलू रहेगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाए, इसके लिए बहुत अच्छी राजयोग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और देखिए, ये कॉन्फिडेंस भी मनुष्य के पास तभी आएगा कि मेरा सिलेक्शन निश्चित है, जब उसकी तैयारी अच्छी
तो
हो।
तैयारी पूरी करनी बहुत ज्यादा आवश्यक,
तैयारी पूरी
अपनी तरफ से हम बेस्ट करें, उसके पश्चात जो आपने जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताए हैं उनके आधार पर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और फिर इंटरव्यू भेजें।
क्योंकि यही तो होता है कि बहुत सुंदर तैयारी होने के बाद भी जो डर की फीलिंग है, नर्वसनेस है, वो उनको सफल नहीं होने देती।
बिल्कुल।
तो और वो भूल भी जाते हैं कुछ, वो जब प्रश्न पूछेंगे तो वो ऐसे ऐसे करने लगेंगे, वो देखेंगे क्या था, इतने में तो काम पूरा हो जाता है।
बिल्कुल।
तो निडरता आ जाएगी।
जी जी जी। प्रता जी, मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। ये हमारे पास आया है जमशेदपुर से, और वेदांत शुक्ल जी लिख रहे हैं। ये कहते हैं, आपने आध्यात्मिक व्यक्तित्व को सभी प्रकार के व्यक्तित्वों का आधार बताया, लेकिन आज की पीढ़ी को अध्यात्म आदि में कोई रुचि नहीं है। यदि आप लोग उनमें अध्यात्म के प्रति रुचि पैदा कर सकें तो आप लोग सचमुच साधुवाद के पात्र होंगे। वेदांत
शुक्ल, बिल्कुल शुक्ल जी ठीक कहते हैं। और मनुष्य ने ही आध्यात्म को भुलाकर मनुष्य को भौतिकता की इस लंबी चौड़ी जो रेस चल रही है इसकी ओर धकेल दिया है
जी।
तो मनुष्य ने ही उसे भौतिकवादी बनाया है। और हम मनुष्यों का एक काम होगा युवकों को विशेष रूप से आध्यात्मवादी बनाना। और हम ये देखते हैं कि हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वालों की बहुत बड़ी संख्या युवकों की है, उसमें छोटे बच्चों से लेकर और 20-22 साल तक के लड़के और लड़कियां बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। राजयोग मेडिटेशन में वो इतने सफल अपने को महसूस करते हैं और अपने को जीवन में चेंज लाने की उनकी एक ऐसी इच्छा देखी गई है जो बाहर के लोग, आम लोग नहीं समझ पाते। वो तो लड़के लड़कियों की ड्रेस देखकर, उनके बातचीत करने का तरीका देखकर कहेंगे ये तो सब मॉडर्न हो गए हैं, ये हमारी बात सुनेंगे नहीं, इनका धर्म अध्यात्म से क्या लेना देना। लेकिन हमने ऐसा नहीं पाया, क्योंकि मनुष्य जीवन का बीज भी तो आत्मा है ना, और वो सबके अंदर है। तो एक तरह से सबके अंदर स्प्रिट है, तो स्पिरिचुअलिटी के बीज भी हैं। हमें केवल उसको, मनुष्यों को उस ओर ले चलना है। तो हमारी ओर से ये पूरा प्रयास हो रहा है और बहुत सारे युवक इसमें सफल हो रहे हैं, और वो युवक ही ये आध्यात्मिक क्रांति इस वसुंधरा पर पुनः ले आएंगे और युवकों का एक बड़ा समूह आध्यात्म से जुड़ जाएगा। मैं तो अगर अपने सर्वे के अनुसार कहूं तो ओल्ड एज लोगों से, मतलब 60 साल के बाहर के लोगों से कहीं ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं 40 साल से कम के लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर, बहुत एक्टिव भी, बहुत अट्रैक्टिव भी, अट्रैक्शन हो रहा है उन्हें इस तरफ। तो ये एक सुंदर भविष्य का संदेश, एक सुंदर भविष्य की छाया पहले ही हमें दिख रही है। और निश्चित रूप से शुक्ल जी की जो एक सुंदर आस है, हम इस महान कार्य में सफल होंगे।
लोग कहीं ना कहीं भ्राता जी निराश होते जा रहे हैं युवा पीढ़ी को देखते हुए कि ये तो बिल्कुल भौतिकवादी होते जा रहे हैं, और जिस प्रकार की घटनाएं आजकल समाज में हो रही हैं, हिंसा, बलात्कार या अपराध की घटनाएं, उससे भी बहुत निराश हो रहे हैं कि अध्यात्म तो इनके लिए बहुत दूर की कौड़ी है, वो ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि ऐसा नहीं है, अध्यात्म उनके अंदर है, केवल आवश्यकता है उन्हें दिशा दिखाने की। और सचमुच एक सही राह यदि दिखाई जाए, चाहे वो बचपन से हो, चाहे युवा पीढ़ी को, जब भी जिस भी एज ग्रुप में वो हैं, तो निश्चित रूप से हम समाज को
बिल्कुल
बदल
पाएंगे। मैं इसमें कहना चाहूंगा कि दिल्ली में 5 लोगों ने गैंग रेप को अंजाम दे दिया या किसी छोटी बच्ची के साथ 2-4 ने, तो इसके आधार पर हम सब युवा वर्ग को तो नहीं तोड़ सकते ना। बहुत ही युवक अच्छे हैं, युवकों में हमें बहुत चरित्रवान लड़के और लड़कियां मिलते हैं। केवल उनकी ड्रेस को देखने से ये काम नहीं होगा। तो अगर 5% युवक बुरे हैं, मैं तो ये कहूंगा इससे ज्यादा हैं ही नहीं बुरे, 95% वो बहुत अच्छे भी तो हैं। तो अच्छाई का प्रभाव भी तो बहुत पड़ेगा। ये ठीक है कि बुराई का प्रभाव इसलिए पड़ता है कि मीडिया उसे जरा
हाईलाइट
कर देता है। अच्छी घटनाएं बहुत हो रही, हमारे युवक बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, गरीबों को मदद करते हैं, गांव गांव में जाकर लोगों के व्यसन छुड़ा रहे हैं, उन्हें जीवन जीने का राह दिखा रहे हैं, रोगियों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो हाईलाइट नहीं होती तो सबको लगता है ये युवक सब बेकार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनमें से कई देवत्व को अंदर समाये हुए भी लोग हैं।
बिल्कुल, और ऐसे युवा ही समाज में परिवर्तन लाएंगे, प्रकाश लाएंगे, और साथ ही साथ लोगों के जीवन में भी जो एक निराशा फैलती जा रही है उनके लिए भी आदर्श रूप में सामने आएंगे। प्रताप जी, अगला मेल है, आई एम अनु फ्रॉम दिल्ली। आई रियली एडमायर मदर टेरेसा फॉर हर पर्सनालिटी एंड क्वालिटीज। आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, इम्पेशेंट एंड एरोगेंट बाय नेचर। हाउ डू आई कैन चेंज माई सेल्फ एंड इम्बाइव द क्वालिटीज ऑफ लव, पीस, पेशेंस एंड टॉलरेंस so that I can help others in life।
बहुत अच्छी इनकी ये भावना है। देखिए, जो मनुष्य अपनी कमजोरियों के बारे में अवेयर है और जो मनुष्य अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और तीसरी क्वालिटी जो उन्हें चेंज करना चाहता हो, इनफैक्ट ही और सी इज ग्रेट, तो ये इनकी बहुत महानता है कि वो अपने अहम को या अधैर्यता को या चिड़चिड़ेपन को या और किसी डिफेक्ट को पहचानती हैं, उसे स्वीकार करती हैं कि ये मेरे अंदर है और उसे चेंज करने के लिए तैयार है। इस संसार में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनमें बड़े बड़े अवगुण होते हैं, अहंकारी होते हैं, और वो समझते हैं सब अहंकारी हैं मुझे छोड़कर, दूसरों के अहंकार को सब पहचानते हैं। अपने अहंकार को पहचानना सचमुच एक विवेकशीलता, एक श्रेष्ठ बुद्धि का परिचायक है। तो इसने अपने अहंकार की बात की है, हम इसे थैंक्स देंगे सच्चे दिल से। और इसकी सिंपल विधि है कि थोड़ी सी ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लें कि मैं आत्मा हूं, मैं पीसफुल हूं, मैं लवफुल हूं, मैं प्योर हूं, मैं बिल्कुल हम्बिल हूं। तो रोज सवेरे उठकर अगर 5 बार ये याद करें, मैं आत्मा हूं यहां, मैं पीसफुल हूं, मैं लवफुल हूं, प्रेम स्वरूप हूं, मैं प्योर हूं और मैं बिल्कुल हम्बिल हूं, निरहंकारी हूं, 5 बार करने से ये 5ों क्वालिटी इनके अंदर बढ़ने लगेंगी और इसके विपरीत जो बुराइयां आ गई हैं वो आप ही अपना स्थान छोड़ देंगी। बिल्कुल ये सिंपल विधि अपनाएं तो जो इसकी अभिलाषा है वो तेजी से जीवन में आएगी, पूर्ण होगी, और ये भी मदर टेरेसा की तरह समाज की बहुत अच्छी सेवा कर सकेंगे। इनकी पर्सनालिटी में भी, इनके व्यक्तित्व में भी वैसी रौनक आ जाएगी।
वैसे भी कहा जाता है भ्राता जी कि जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण जीवन में आ ही जाते हैं, और वैसे ज्यादातर लोगों से पूछा जाए कि क्या बनना चाहते हो तो वो कहते हैं हम डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं। ये तो इनकी बहुत अच्छी बात लगी कि मदर टेरेसा को अपना आदर्श मानती हैं और वैसा बनना चाहती हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य हमें जल्दी ही एक और मदर टेरेसा देखने को मिलेगी।
बिल्कुल मिलेंगी, कई मिलेंगी
जी। प्रताप जी, अगला प्रश्न है, शैलजा श्रीवास्तव बनारस से लिख रही हैं और ये कहती हैं, आपने 5 प्रकार के व्यक्तित्व की चर्चा की और बहुत गहराई से इसकी व्याख्या भी की। मैंने इसके सभी एपिसोड देखे और मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी चीजों पर शायद एक साथ फोकस करना संभव न हो, तो क्या ये संभव है कि आप कुछ की पॉइंट्स हमें दें जिस पर ध्यान देकर हम अपना सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास कर सकें?
हाँ, ये भी इनकी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई मनुष्य जिसका जीवन बहुत व्यस्त है, अब वो एक व्यक्तित्व के विकास के लिए ही तो कभी मन का व्यक्तित्व, कभी बौद्धिक, कभी व्यवहारिक, इन चीजों पे तो वो अलग अलग ध्यान भी नहीं दे सकता और उसको इसमें बहुत लंबा समय भी लगेगा। लेकिन इन सब का केंद्र बिंदु है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, यानी हम आत्माएं हैं और हम भगवान के बच्चे हैं। तो हम इस चीज को अपने अंदर एक्सेप्ट करते चलें और बढ़ाते चलें कि उसकी बहुत सारी क्वालिटीज हमारे अंदर है, हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए हमें बहुत रॉयल होना चाहिए। तो जो व्यवहारिक बात थी ना व्यक्तित्व की, वो बहुत तेजी से जीवन में आने लगेगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात याद रखेंगे, हम भगवान के बच्चे हैं, therefore we are very royal, we must be very royal। और दूसरी चीज सबको याद रखना चाहिए जो मनुष्य भूल गया है कि हम देव कुल की भी आत्माएं हैं, हमारे अंदर देवत्व भी तो है, देयरफॉर वी आर रॉयल। तो हमारा व्यवहार हमारे देव कुल की मर्यादाओं के अनुरूप ही होना चाहिए। हमारा व्यवहार, हमारे आचरण, हमारे बोल या हमारी भावनाएं इसके अनुसार होनी चाहिए कि हम भगवान के बच्चे हैं। जैसे भगवान किसी के लिए श्राप देने वाले शब्द नहीं बोल सकता, वो किसी से बदला लेने की भावना नहीं रख सकता, वैसे ही हम भी उसके बच्चे होने के नाते सबको वरदानी बोल बोलेंगे, सबको क्षमा कर देंगे। तो ये दो चीजें ऐसी हैं, हम भगवान के बच्चे हैं और देवकुल की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इनसे ये बहुत सारी जो पर्सनालिटी की पांचों की हमने बात की, वो सब जीवन में आएंगी, मन की शक्तियों का विकास होगा और बौद्धिक दिव्यता भी बहुत सहज प्राप्त हो जाएगी।
जी भ्राता जी, आपने जो दो बातें कही, एक बात को तो सभी धर्म वाले सहज रूप से स्वीकार कर लेंगे कि हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन जो दूसरी बात है कि मैं देव कुल की श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो संभव है कि हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य जो धर्म वाले हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट न कर पाए और इस माध्यम से अपने आप को न विकसित कर पाए, तो वो क्या करें?
उन्हें बस इतना करना चाहिए कि हमारा जो धर्म है, मान लो मुस्लिम धर्म में है, तो हम मुस्लिम धर्म के बहुत आदर्श व्यक्ति हैं, हमें हर मुस्लिम बहुत ऊंची भावना से देखता है, हमें वो फॉलो करता है, इसलिए हम एक धर्म के अनुयायी हैं। धर्म अपने में ही एक पवित्र शब्द है, बहुत नेक चीज है ये, तो हमें अपने आचरण से, अपने व्यवहार से सबका दिल जीतना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए, सबके दुख दर्द पूर्ण करने चाहिए। तो हर धर्म वाला इस तरह विचार करेगा तो उनमें व्यवहारिक व्यक्तित्व चमक उठेगा।
बिल्कुल, तो ईश्वर की संतान और साथ ही व्यवहारिक क्षेत्र में मुझे सबको सुख देना है, सहयोग देना है, ऐसे कार्य करने हैं जिसके माध्यम से मैं दूसरों के दिलों को जीत सकूं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। भ्राता जी, जो अगला हमारे पास मेल आया है, ये मेल है राकेश वर्मा जी का पटना से, और ये लिख रहे हैं, हाउ कैन आई ओवरकम दिस फीलिंग दैट व्हाट अदर्स थिंक अबाउट माई पर्सनैलिटी, समटाइम्स इट डिस्टर्ब्स मी अलॉट। ये बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है मुझे लगता है युवाओं की, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बहुत सुंदर बात रहता है जी, मैंने पढ़ी थी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग।
बिल्कुल यही है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये जानना चाहिए, जैसा मैं अपने बारे में सोचूंगा वैसे ही दूसरे भी मेरे बारे में सोचेंगे। अब इनको ये हमारी बात अवश्य सुन रहे होंगे, अब दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सोच सोच कर परेशान होने की जगह मैं जो अपने बारे में सोचूंगा वही सब मेरे बारे में सोचेंगे, और ये इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पर अनुभव करके भी देख सकते हैं। ये अपने विचारों को बदल दें और अपने बारे में सुंदर सोचना प्रारंभ कर दें। पहले तो यही सोचें, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे गुणवान बनना है, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मेरे अंदर तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं, सफलता तो मुझे कदम कदम पर मिलेगी, मैं जो चाहूं इस जीवन में प्राप्त कर पाऊंगा, ऐसी इनर पावर्स मेरे पास हैं, तो दूसरे भी वैसी ही अप्रिसिएशन के बोल बोलने लगेंगे, ये दिखाई देगा।
बिल्कुल, और भ्राता जी ये भी तो एक प्रैक्टिकल बात है कि हम कहाँ तक ये सोचे कि लोग क्या क्या सोचते हैं मेरे बारे में, ये क्या सोचता है, वो क्या सोचता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और यदि हम सारे दिन यही सोचते रहे तो हम अपने मूल लक्ष्य से भटक जाएंगे।
बिल्कुल, और हम किसे किसे संतुष्ट करेंगे?
बिल्कुल,
देखिए एक व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, उसकी 10 लोग वाह वाह कर, 10 सोचो क्यों, 1000 लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन 20 लोग ऐसे भी तो होंगे ना जो डिफेम करेंगे, जो उल्टे कमेंट्स करेंगे। अभी मान लो उसके पास 1000 लोगों की अप्रिसिएशन तो पहुंची नहीं, और 20 में से 2 लोगों के निगेटिव कमेंट्स पहुंच गए, तो वो कहेगा अरे मैंने इतना अच्छा काम किया, ये लोग कैसे हैं, ये ऐसा ही बोलते हैं देखा, तो उसके जीवन में निराशा ही निराशा आएगी। दूसरी बात, ह्यूमन मेंटेलिटी है, जो व्यक्ति बहुत अच्छा काम करेगा, जिस व्यक्ति की प्रशंसा बहुत होगी उसको कुछ ना कुछ सुनना भी पड़ेगा। मनुष्यों की सुनाने की नेचर है, वो अपनी ईर्ष्या को इस तरह बाहर निकालेंगे, वो अपने छुपे हुए क्रोध को इस तरह बाहर निकालेंगे, देखा इसने ऐसा किया, ये क्या किया, ऐसा तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा तो उसने भी किया है। तो इन चीजों को बहुत लाइटली लेकर और दूसरों के कमेंट्स से बिना प्रभावित हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना चाहिए।
बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने ऊपर फोकस्ड रहें, अपने बारे में सोचें। और जैसा आपने कहा कि विचार जैसे मेरे होंगे वैसे ही लोग भी सोचेंगे, एक बहुत सुंदर और आदर्श और आधारभूत बात दादाजी आपने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए, बहुत सुंदर ज्ञान रत्न आपने हमारे जो भी श्रोता हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं उन्हें दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी आपका। मित्रों, दूसरों को यदि हम देखते रहेंगे, उन्हीं की बातें सुनते रहेंगे, तो हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। मुझे याद आता है दो मेढकों की कहानी। दोनों एक गहरे गड्ढे में गिर गए थे। बाहर बहुत सारे मेढक इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब तुम दोनों कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे, इसलिए जहां हो वहीं पड़े रहो, वहीं तो अपने जीवन का अंत करो। एक मेढक ने तो प्रयास करना छोड़ दिया, उछलना छोड़ दिया, बाहर आने का प्रयास नहीं किया, लेकिन दूसरा मेढक वो प्रयास करता रहा और फाइनली बाहर आ गया। वो मेढक बहरा था, अर्थात उसने लोगों की, मेढकों की बातों को ध्यान नहीं दिया, सुना ही नहीं, और प्रयास करता रहा और अंततः बाहर आ गया। यही चीज हमारे साथ भी है मित्रों। हम लोगों की नेगेटिव बातों को न सुने, लोगों की ओर ध्यान ना दें, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य पर फोकस्ड रहें और लगातार सतत परिश्रम करते रहें, तो संसार की कोई भी शक्ति हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। समाधान में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।